نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اس سال خطبہ حج جو 2018 میں ہوا تو اس کا اردو ٹرانسلیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. پہلا پوائنٹ یہ ہے اس سال کے خطبے کا کہ ہمیں اپنے آپ کو پریکٹسنگ مسلمز کے ان بٹوین رکھنا چاہیے. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ظاہر ہے کہ ہمارے اوپر ان کا رنگ آئے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ ہی. کل رات کو بھی کسی سے یہ میں نے بات شیئر کی تھی کہ ہم کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں نا, اس کا ہماری زندگی پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے. تو یہی دنیا اور آخرت میں ہمارے بیسٹ فرینڈز ہیں. سچی بھی بات ہے, کسی سے بات ہوئی میری اور میں نے ان کو یہ بتایا کہ دیکھیں جب آپ دنیا دنیا کی دوستی ہوتی ہے نا آپس میں وہ بھی اچھی ہوتی ہے, لیکن اس میں ذرا سی بات پہ تقابل آ جاتا ہے, جیلسی ہے, دوستیں ایون ایک دوسرے کے کپڑوں پہ حسد کر لیں گی. لیکن اگر بیچ میں دین آ جاتا ہے نا تو پھر اس کی وجہ سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ چپتی نہیں بات, ہوئی بات ختم, کوئی اس کو لے کے لٹکتا نہیں ہے. تو پھر آپ کا میرا پہلا کیا گول ہونا چاہیے یا مول ہونا چاہیے کہ ہم نے پریکٹس کرنے لے مسلمانوں کے بیچ میں رہنا. اور آپ نے بھی یہ چیز دیکھی ہوگی, جو لوگ قرآن کی طرف آتے رہتے ہیں, قرآن سے جڑے رہتے ہیں, چاہے ترجمہ یاد ہو نہ ہو, گرامر ہو نہ ہو, لیکن ان کے اوپر ایک رنگ رہتا ہے دین کا. اور جب وہ محفلیں چھٹتی ہیں تو کیا ہوتا ہے, آپ کو اس کا کوئی بتانے کا ضرورت تو نہیں ہے نا, کیسے رنگ اڑتا ہے. اور پہلا اترتا ہے, پہلے پہلے قرآن کا رنگ اترتا ہے, صبغت اللہ والا رنگ اتر جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر اگلا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ ایک بندہ کسی کو پہچانتا ہی نہیں. کسی سے میری بات ہوئی, بچی سے, نہیں نہیں پاکستان سے شادی ہو کے آئی ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کو یہاں کیسا لگ رہا ہے نا, فیل ہو رہا تھا کہ اس معاشرے کے اثر کو قبول کر رہی ہے نا. تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا دیکھو ابھی سے اپنے اوپر نظر رکھو, جیسے وزن ہے نا انسان کا, اگر آپ واچ کرتے رہے نا تو کہیں نہ کہیں کنٹرول رہتا ہے, لیکن جب آپ بالکل کیئر لیس ہو جاتے ہیں نا اپنے وزن کے بارے میں تو پھر آپ کو کوئی حد ہی نہیں رہتی. ٹھیک ہے, اسی طرح جب ہم ان سوسائٹیز میں آتے ہیں یا ہماری کمپنی بدلتی ہے, اور خاص طور پہ شادی کا ہونا یا ایک ملک سے اٹھ کر دوسرے میں آنا, یہ بہت خطرناک وقت ہے. میں نے کہا اگر آپ اپنے اوپر نظر نہیں رکھیں گی تو ایک سال بعد آپ خود کو پہچان نہیں سکیں گی. میری اس بات کو سن کر اس کے اوپر کچھ تفکر کی بات آئی تھی, کیونکہ جب ہم اگلی زندگیاں اچھی کرنے کے شوق میں ہوتے ہیں نا تو ہم ساری روایات کو ایسے ایسے بھول جاتے ہیں. تو ہمیشہ اپنے آپ کو اچھے لوگوں میں ہم نے رکھنا ہے. پھر دوسری بات کیا ہے, بہت پیاری بات ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو جج کر سکے. دنیا میں جو آپ کے میرے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں نا وہ سارے نہیں ہوتے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا بیسٹ چاہتے ہیں, جو آپ کا صحیح, آپ کو سب سے اچھا دیکھنا چاہتے ہیں, اور وہ آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جنت میں چلے جائیں. تو ایسے لوگوں کی قدر کیجیے. کتنا پیارا نکتہ ہے. آپ دیکھیے کہ عموماً ہمیں ایسے لوگ برے لگتے ہیں. وہی بات ہے نا کہ چمن میں میری تلخ نوائی گوارا کر, کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے تریا کی. ایک یہ کہ آپ کو پتہ بھی لگ گیا, آپ کچھ نہ کہیں اس کو, اور دوسروں سے پھر آپ کہیں گے, یہ بھی یاد رکھیں. کم از کم میں اپنے بارے میں یہ گواہی دے سکتی ہوں کہ اگر مجھے آپ میں سے کسی کی کوئی بات بری لگے گی میں آپ کو کہوں گی, میں دوسرے کو نہیں کہوں گی, اور آپ کو کہنے کے بعد میرے دل سے بھی نکل جائے گی. لیکن اگر میں آپ سے نہیں کہوں گی نا تو پھر مجھے گلٹ رہے گا کہ میں آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں, میں نے اپنے دل میں بات رکھی اور آپ سے اوپر سے کوئی نہیں نہیں کچھ بھی نہیں, میں تو بہت ٹھیک ہوں, میں تو بہت خوش ہوں, ایسا کہوں گی نا تو وہ بھی منافقت ہوگی. آپ اپنے بچوں پہ بھی یہ لیں, آپ دیکھیے کہ آپ کے بچے ہیں, اگر آپ کو ان میں کوئی بات بری لگے تو ان کو کہیں, اگر آپ ان کو نہیں کہیں گے نا تو پھر یاد رکھیے کہ وہ بدلیں گے بھی نہیں, ان کو سمجھ نہیں آئے گی. تو پھر دوسرا نقطہ کیا ہے کہ ان لوگوں کی قدر کیجیے جو آپ کو جج اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کی دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے. پھر تیسرا نقطہ کیا ہے کہ وہ دوست جو آپ کی آخرت کی بہتری نہیں چاہتا, مان لیجئے کہ وہ آپ کا دوست ہی نہیں ہے, یعنی وہ سہیلی جو آپ کی آخرت اچھی نہیں کرنا چاہتی, سمجھ لیجئے کہ پھر وہ آپ کی دوست نہیں. اگر اس معیار پہ لے کر سوچیں پھر ہمارے کتنی کو دوستیں ہیں. بعض دفعہ آپ دیکھیے دوستوں کے جھرمٹ میں ہم کپڑوں کی باتیں, فلموں کی باتیں, اور جو بھی سیاسی باتیں کر لیتے ہیں, لیکن نہیں کرتے تو دین کی بات نہیں کرتے. تو آپ کے میرے لیے ایک معیار ہے, اور وہ کیا ہے کہ جو آپ کی آخرت کی پرواہ نہ کرے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیسے پتہ چلے کہ آخرت کی پرواہ کی ہے کہ نہیں. مثلا آپ کو فکر ہے میں نے نماز پڑھنی ہے, اور یہ چھوڑو شاپنگ کرتے ہیں بعد میں پڑھ لینا. آپ سوچتے ہیں کہ جی میرا حال حلیہ ٹھیک نہیں ہے, میں ان کپڑوں میں باہر نہیں جا سکتی, تو وہ کہتی کوئی نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, سب پہنتے ہیں. اب یہ جملے کتنے کامن ہیں آپ دیکھیے. इसी तरह आप देखिए, आप कहीं सफ़र में आप कहते हैं नमाज़ के लिए रुके, नहीं 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 घर जाके पढ़ लेंगे। यदि जो बंदा आपके अमल को कमज़ोर करना चाहता है, आप समझ लीजिए कि वो सही मानों में आपका दोस्त नहीं है, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है कि बाज़ दफ़ा जिस शख्स को आप बहुत मुश्किल से बदल सकते हैं, उसकी इसलाह करना वो कौन है? आप खुद हैं। यानी दूसरे आपके कहने पे बदल जाएंगे, आप नहीं बदलते। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आपने गलत किया है, हो सकता है इंसान से गलती होती है, लेकिन ये शर्म की बात है कि आप अपने लिए चूज़ ही कर लें कि मैंने गलत रहना है। आप देखिए ये करेक्टर बिल्डिंग के की पॉइंट्स हैं कि नहीं, और आप सोचें हाँ ज़रा, जब कितने लाखों का मजमा हुआ होगा ना, ये कितनों को बातें बताऊंगी। मैं तो कहती हूँ हज पे जाने से पहले अरबी भी थोड़ी बहुत सीख के जाए बंदा। और जो वहाँ बैठे होते हैं, बाज़ दफ़ा मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से भी देखा है, आवाज़ भी नहीं पूरी आ रही होती। खुतबा मस्जिद नमरा में हो रहा होता है, उन्होंने स्पीकर सिस्टम सब जगह लगाए होते हैं, हमारे अपने देसी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, या वहाँ बैठ कर कोई जिक्र अजकार कर रहे हैं, कोई नफलों में है। तो ये की पॉइंट्स हैं, अल्लाह ताला आपके लिए मेरे लिए इसको समझना आसान कर दे। फिर अगला पॉइंट है कि हर वो शख्स जो आपको अल्लाह के करीब करेगा ना, वो आपको जहन्नम से दूर कर देगा इंशाल्लाह। और हर वो बंदा जो आपको अल्लाह से दूर करता है, वो आपको जहन्नम के करीब कर देगा। है ना सुच्चे मोती, बात समझ गए? यानी हर वो बंदा जो आपको अल्लाह के करीब करे, तो क्या करना है? उन लोगों को ढूंढिए जो आपको अल्लाह के करीब कर दें। और इसके ऑपोजिट दूसरा भी आप जानते हैं कि जो आपको अल्लाह से दूर करेगा, वो जहन्नुम के करीब ज़रूर करेगा। ये नहीं हो सकता कि आपको कोई अल्लाह के भी करीब करे और जहन्नुम के भी करीब करे, इट्स नॉट पॉसिबल। अल्लाह हम ऐसे लोगों की कदर की तौफीक दे। और अमूमन लोग ऐसे लोगों से भागते हैं, उनको अपना दुश्मन समझते हैं और कहते हैं इनका तो एक ही काम है, ये तनकीद करेंगे, ये नसीहत करेंगे, इनको तो बस दर्स देने की आदत है। परसों हमारे पास इधर ईद नहीं थी, कुछ लोगों ने की कुछ ने नहीं की, तो हमने बुखारी पढ़ी थी ना, तो मैंने उसका मैसेज भेजा, जैसे जाता है हर जगह, तो मुझे किसी एक का मैसेज आया आज ईद के दिन भी आप क्लास ले रहे हैं। अब उनके लिए ये चीज़ थी कल, बल्कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो फिर मैंने उस वक्त थैंक यू फैमिली में एक मैसेज भी छोटा सा छोड़ा था कि मेरा कोई दिन क्यों खाली जाए, ठीक है आज मेरे पास कोई भी नहीं है सुनने के लिए, लेकिन मैं सुना तो सकती हूँ ना, तो अल्लाह सुना देगा जिसको भी सुना सकता है। तो हमेशा याद रखें कि जो अल्लाह ताला के करीब करे, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि कहते हैं कि आने वाले कल को हमेशा हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम कहते हैं आ जाएगा कल, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कल तो आए किसी दिन तो हम ना हों, हम ना हों। कल भी सुबह किसी की डेथ की खबर आई मैसेज में, किसी ने 3 दफ़ा छोटे से मैसेज में अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ था, और साथ बताया था कि मेरी फूफो की बेटी, जो 3 बच्चे थे और 30-32 साल की उम्र की थी, ईद वाले दिन उनकी डेथ हो गई है, और हर बात में साथ अल्हम्दुलिल्लाह लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह उनको बरी भी कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं सोच रही थी ये शऊर कुरान पढ़े बगैर नहीं आता, वरना लोग तो ये सोच रहे होते हैं हाय हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मैं यही सोचती हूँ कि ईद से एक दिन पहले आपको खबर सुनाई कि कुर्बानी लेने गए और सारे ही घराना ख़त्म हो गया सिवाय माँ के, आज ईद के दिन भी एक माँ 3 बच्चों को छोड़ के चली गई, ये गवाही मिल गई। और ये तो आपके मेरे पास थोड़ी बहुत चीज़ें मिलती हैं ना, इससे बहुत कुछ पहले भी हो रहा होगा। तो हमेशा याद रखिए कि आने वाला कल बड़ा अहम है। फिर इसे अगली बात भी कल से ही मुतल्लिक है, कहते हैं कौन कहता है कि कल गारंटेड है, यानी आपको मुझे इस बात की गारंटी है कि कल आएगी? आज का सही इस्तेमाल कर लें जो अल्लाह ने आपको तोहफा दिया है। वही बात है ना कि अक्लमंद लोग कल पे नहीं बातें डालते, आज पे डालते हैं। और आप देखिए बहुत सारे लोग हैं हमेशा क्या कहते हैं, प्रोकास्टिंग भी कहते हैं ना इसको, कामों को आगे ही डालते रहना, डिली डाली, कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, मुमकिन नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो हमेशा इस चीज़ की ख्वाहिश रखें कि हम सब अपने आने वाले कल से ज़्यादा आज की फ़िक्र करें। किस तरह से? कि अपनी इसलाह करनी है ना तो आज शुरू कर दें, अगर अपनी कोई बुराई छोड़नी है ना तो आज शुरू कर दें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। फिर इसके बाद यानी कल जो गुजर गया, उसे बहुत सारों ने सोचा था कि आज का दिन उनके लिए आ जाएगा, और आज आ गया ना तो क्या करो भला, समझिएगा। कल आपने सोचा ये आज करूँगी, यानी टुमारो, कल का टुमारो आज का टुडे हो गया ना, लेकिन आज आ गया ना वो, तो अब कर लेना चाहिए ना जो सोचा था। आज क्या कहेंगे, नहीं अब इसको हम टुमारो करेंगे। कोई ऐसा है जिसको ना समझ आई हो बात? जो बात कल सोची वो आज हो गई, तो शुक्र करें कि मैंने सोचा था कल आएगा तो मैं काम कर लूँगी, तो आज आ गए तो कर ले। तो आज आप कहते नहीं अब मैं कल करूँगी, वही बात है कि कल 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 कल। तो हमेशा अपने आज की बात करें। फिर उसके बाद कहते हैं कि मौत आज रात भी आ सकती है, अगले घंटे में भी आ सकती है, और अगले सेकंड में भी आ सकती है। येट वी लिव एज, लेकिन इसके बावजूद हम ऐसे रहते हैं कि जैसे अभी हमारे पास बहुत सारे साल हैं जीने के लिए। इज़ इट ट्रू? कितनी करीब है मौत, और ये सडन डेथ जो आजकल हम सुन रहे हैं, इन सब को सुनकर कभी कानों में अपनी मौत को तो हम डालें? अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमा दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मौत तो जूते के तस्मे से भी करीब है। मुझे समझ नहीं आती थी कि ये क्या बात है, लेकिन समझ ये आई कि जब बंदा खड़ा होता है और एकदम अगर उसकी जान निकले तो वो पाँव पे गिरता है, सीधा कट करके गिरता है, और गोया के उधर गिरने में टाइम ज़्यादा लगेगा, मौत उससे पहले आ चुकी होगी। फिर अगली बात है कि कहते हैं कि आप दुनिया में बहुत अमीर हो सकते हैं, बहुत मशहूर हो सकते हैं, आपका इस दुनिया में बहुत ऊंचा मुकाम हो सकता है, लेकिन मलकुल मौत यानी फरिश्ता मौत जो है उसकी नज़र में आप एक नाम है जो उसकी लिस्ट में है जिसको आज लेना है। क्या पता हमारा नाम भी चल पड़ा हो, कहीं ना कहीं लिखा होगा ना। तो हमेशा अपने आप को जिंदों की बजाय मुर्दों में महसूस कीजिएगा। वाकई सोचे बड़े बड़े चले गए दुनिया से, फिर क्या हुआ? मलकुल मौत को क्या लग गया आप वजीर हैं या आप मशीर हैं या आप कोई आम इंसान हैं? फिर अगला पॉइंट है, कहते हैं कि हमारी मौत और अल्लाह से मुलाकात जो कि हमारा खालिक है बिल्कुल हमारे पास पहुंचने वाली है, लेकिन अभी तक हमारा सबसे बड़ा गम क्या है कि हम कल क्या पहनेंगे? लोगों से कंपटीशन में, यानी दूसरों को दिखाने के लिए या एज़ कंपेयर टू की बात कर लीजिए, हम क्या पहनेंगे, हम इसी गम में हैं। और इससे पहले हो सकता है कि हमारी अल्लाह ताला की कॉल आ जाए कि आपको एक मीटिंग में बुला लिया गया है। यकीन आता है? हम सब अपने ऊपर लेकर सोचें। फिर अगली बात क्या है कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोगों की याद का हिस्सा बन चुके होंगे सिर्फ। पीपल विल जस्ट याद करेंगे आपको। ऐसे ही करते हैं हम कुछ लोगों को याद, और कितना अच्छा लगता है दूसरों को याद करना। एक दिन लोग हमें याद करेंगे, और आप क्या होंगे? एंड अ लेसन टू अदर्स, या फिर आप दूसरों के लिए एक सबक होंगे, यानी लोग आपके ज़रिए से सबक हासिल करेंगे। करो फिर क्या, लोगों की परवाह ना करो। लोगों ने या तो आपको याद रखना है या आपसे कोई सबक ले लेना है। करें क्या, जो करना है अल्लाह को खुश करने के लिए करें, और पॉजिटिव लेसन दें ज़िंदगी को, यानी लोगों के लिए एक अच्छा सबक, एक अमल, एक नसीहत बन के जाएं, ना कि आप लोगों से डरते डरते अल्लाह के पास पहुंच जाएं। नेक्स्ट पॉइंट के कहते हैं कि सोचो कितने लोग पिछले साल हमारे साथ थे और आज नहीं है, तो ये सोच लें कि हमारी भी बारी आने वाली है। अल्लाह उनको भी और हमें भी माफ़ कर दे। चंद सेकंड मैं खामोश रहती हूँ। आप इस पूरे साल में, आपने पिछले ज़िलहज से लेकर इस ज़िलहज में जितनों की मौत की खबरें सुनी हैं, आप उनको इमेजिनेशन में लाएं। अपनों में भी कई गए होंगे ना, मिलने वालों में भी गए होंगे, और मुल्की सतह और पूरे वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पे भी कई गए होंगे। अल्लाह ताला हमारी राहें आसान कर दे। फिर नेक्स्ट है कि कहते हैं कि हम मतलब अपने पांव ऊपर उछाल उछाल के यानी आसमान को छूना चाहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक दिन हम 6 फुट गहराई में ज़मीन के अंदर होंगे, यानी हम ज़मीन के अंदर 6 फुट गहरी खाई में होंगे। आजकल एक चीज़ बहुत नज़र में मेरे आ रही है, जब कब्रिस्तान से इधर से गुज़रते हैं ना, तो इन गोरों का सिर्फ कतबा लगा होता है, यानी नॉन मुस्लिम्स हैं, इनकी कब्र उस तरह ढेरी की शक्ल में नहीं होती जैसे हमारे अपने पाकिस्तान में होती हैं, और इनका शायद वो कफन सा एक होता है जो सीधा ही डाल देते हैं अंदर और उसको प्लेन कर देते हैं ना, इन लोगों की कब्र ऊपर नहीं होती,
बस वो
ये लेवल कर
कैंची
देते
डाल
हैं।
के तो, बक्सर का डाल के तो
हाँ जी, तो इसके बरक्स हालांकि हमें अपनी कब्रें सीधी रखनी चाहिए, तो आप देखें इधर कब्रिस्तान से जब आप गुजरते हैं ना तो सारी कब्रें ऐसे प्लेन है, कतबा ना लगा हो तो पता भी नहीं लगता कि किधर कब्र है। तो आप सोचें ज़रा वो वक्त जो दुनिया में बंदा अकड़ में और बड़ाई में जीता है, उसको यकीन आता है कि मैंने इतनी गहराई में चले जाना है। हम अपने ऊपर ही लेकर सोचें, ज़रा सा थोड़ी देर किसी बंद जगह में हमें बैठना पड़े तो हम 10 बातें करें, हाय घुटन हो रही, कमरा खिड़की खोलो, पंखा लगाओ, थोड़ा सा आपका अपना ही कपड़ा नकाब स्कार्फ ज़रा सा गले में घुटने लगे तो कितनी कैफियत अजीब सी हो जाती है। तो हमेशा अपने उस जाने को जहन में अगर हम रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारे लिए उसमें खैर होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि तुम हर वक्त अच्छे कपड़ों, फैशन, डिज़ाइनर्स क्लोथ्स में फिरते हो, ढूंढते हैं ना आजकल क्या चल रहा है। मुझे तो इस चीज़ से बड़ी हैरत होती है जब लोग ये कहते हैं ट्रेंड क्या है, फैशन। और आप देख लें, हमने ईद से एक दिन पहले जो स्टॉल लगाया था तो वहाँ देख लिया कि आजकल ट्रेंड क्या चल रहे हैं, और सब लोग फैशन के पीछे फिरते हैं, और कल फैशन चेंज हो जाए उसी को लंबे छोटे करने पर पड़े होंगे। कफन जिसमें जाना है वो एक सफ़ेद लट्ठे का कपड़ा होगा, उसमें लपेटे जाएंगे, कफन का कोई मॉडल नहीं होगा, उसका कुछ नहीं। और अल्लाह माफ़ करे, मैंने सुनी ये बात, अल्लाह करे झूठी हो, अब ब्रांडेड कफन भी बनने लग गए। पैसा खाने और कमाने के तरीके हैं ये। आप लोगों को, अमीरों को कहे हैं कि आपको चेयरमैन के लट्ठे का कफन और आपको फलां कफन, वो सोचेंगे शायद इस कफन में ही लपेट कर कोई बख्शिश हो जाएगी, और ये भी कल शर्म की बात होगी कि इन्होंने आम कपड़े का कफन बांधा। यहाँ से आप देखें कि हम किधर जा रहे हैं, मट्टी में मट्टी हाक होना भी हमें याद नहीं है। हम बाज़ दफ़ा नेकियों के नाम पे काम कर रहे होते हैं लेकिन उसमें भी हमारी इतनी कमियां दबेशियां होती हैं। मैं नमाज़ों के वक्त पे लोगों को देखती हूँ, ये किधर गुम हो रहे हैं, इतने लोगों में पता नहीं कितनों ने पढ़ी है। अल्लाह नोज़ दी बेस्ट, अल्लाह हम पे रहम कर दे, बस और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला पॉइंट है कि लिव टू प्लीज़ द क्रिएटर नॉट द क्रिएशन, इफ़ अल्लाह इज़ हैप्पी विद अस व्हाट मोर कैन वी आस्क फॉर। कहते हैं कि अल्लाह को खुश रखने के लिए जियो, मखलूक को नहीं, यानी खालिक को खुश रखने के लिए जियो, मखलूक को नहीं। इसलिए कि अगर अल्लाह हमसे खुश है तो हमें इसके बाद और क्या चाहिए, यानी अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी। रिजवानुल्लाही अकबर, रिजवानुल्लाह अकबर कहाँ है कुरान में, सूरह तौबा में। हम सब की ज़िंदगी का खुलासा यही होना चाहिए कि हम अल्लाह को खुश करके इस दुनिया से जाएं। फिर कहते हैं कि बड़ी बात है ये भी, कहते हैं कि ये बहुत उदास करने वाली बात है, क्या हम अमूमन नेमतों को अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो मटीरियलिस्टिक थिंग्स हों या अच्छे लोगों की सूरत में हो, कब, जब हम उनको लूज़ कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, हमारा नेमतों के साथ अमूमन यही हाल होता है। तो मादी चीज़ें हों या इंसान हों अच्छे, हम उनकी अमूमन कदर या अप्रिसिएशन उनके दुनिया से जाने के बाद करते हैं, ओनली आफ्टर वी लूज़ देम, व्हेन इट्स टू लेट, जबकि ये उस वक़्त बहुत लेट हो चुका होता है। कहते हैं क्या हम वाकई इसी तरह होना चाहते हैं, यानी जब एक चीज़ आपने उसके जाने के बाद अप्रिशिएट की उससे फ़ायदा क्या होगा। बात समझ रहे हैं, आपके घर में मसलन आप देखिए कि खाने की कोई चीज़ थी लेकिन मेहमान आए तो उस वक़्त आपको नहीं मिली, इस्तेमाल नहीं की, चले गए, बाद में मिली तो क्या फ़ायदा, क्या वो आपने उस वक़्त तो नहीं दी ना। हर चीज़ अपने वक्त पे थी, गर्मियों में गर्मी वाली नेमत थी लेकिन आपने उसको नहीं देखा, इस्तेमाल नहीं किया, तो सर्दियाँ आने पर वो आपके लिए एक बोझ है। तो हमेशा अपने आप पर इस चीज़ को रखें। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यू कहते हैं कि तुम एक डायमंड को कभी नहीं फेंकोगे कि उसको फेंक कर एक पत्थर पकड़ लो, यानी एक पत्थर को पकड़ने के लिए तुम डायमंड को कभी भी नहीं फेंकोगे। सो इन द सेम वे डोंट थ्रे अवे द आखिरा यानी पैराडाइज बाय चेजिंग द दुनिया वर्ल्डली। ये तो समझ आ गया होगा, जिस तरह हम पत्थर पकड़ने के लिए हीरा नहीं फेंकते तो फिर दुनिया पकड़ने के लिए आखिरत को ना फेंके। लेकिन कहानी क्या है, एक लफ्ज़ की भी ज़रूरत नहीं इस पे। मैं तो कुछ लोगों को देखती हूँ और सुनती हूँ, सोचती हूँ, तो मुझे आयत याद आ जाती है, अतस्तब्दिलू नल्लज़ी अदना बिल्लज़ी व खैर, तुमने क्या छोड़ा और तुमने क्या पकड़ा। और अक्सर लोग जो छोड़ते हैं ना, पकड़ते बाद में एक ही चीज़ है। मैं देखे लोग कुरान छोड़ के ना पैसा पकड़ते हैं ना, कभी जॉब, कभी कारोबार, बिजनेस, आखिर सब की एक ही सोच हो जाती है। और अब तो हाल ये हो गया कि जो एक कर रहा है हम सभी वो करेंगे। एक वक्त था जिन हाथों में कुरान होता था, जिसमें कुरान की दावतनामे होते थे, अब वहाँ अपने बिजनेस की फ्लरिशमेंट और उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी। किस काम के लिए रखा। और मुझे याद आ रहा है शायद इमाम शाफ़ी का कॉल है ये इब्ने तैमिया का, कि तुम अपनी वैल्यू अल्लाह की निगाह देखना चाहते हो तो फिर सोच लो कि तुम्हें अल्लाह ने किस काम में लगाया हुआ है। तुम्हारा ये नसीब है कि तुमने ये दुनिया की चीज़ें इकट्ठी करके बेचनी है और जमा करनी है, और कई चीज़ें आप देखिए जायज़ चीज़ें होती हैं, लेकिन तकाबुल, अब मैं आपको इस वक्त पढ़ाने की बजाय जाकर सब्ज़ी बेचने लग जाऊँ तो मैंने ना कदरी की ना अपने इल्म की। तो हमेशा याद रखें कि इस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल क्या था और मैं क्या करने लग गई। फिर कहते हैं, अगली बात भी बहुत ही प्यारी है, कहते हैं कि तुम जन्नत की उम्मीद कैसे लगा सकते हो जबकि दुनिया में तुमने उसके लिए काम ही नहीं किया। दैट्स लाइक एक्सपेक्टिंग टू पास एन एग्ज़ाम यू नेवर टुक अ क्लास फॉर। यानी फिर दोहरा देती हूँ कि आप जन्नत की उम्मीद कैसे लगा सकते हैं अगर आपने दुनिया में उसके लिए काम ही नहीं किया। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई एक इम्तिहान को पास करने की उम्मीद लगा ले जबकि उसने कोई एक क्लास भी नहीं ली। पास होते हैं लोग के फेल होते हैं, ऐसे वक्तों में फेल हो जाते हैं ना, लेकिन हमारा हाल है कि इम्तिहान और काम दुनिया के कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारी आखिरत अच्छी हो जाएगी, और वहाँ बस एक तुक्का लगना है और सब को अल्लाह ने पकड़ कर उसमें जमा कर देना है। नेक्स्ट कहते हैं कि हम आज उस दौर में रह रहे हैं कि लोग मोटे होने के डर से खाना छोड़ देते हैं कि ओवर वेट ना हो जाए, लेकिन अल्लाह के डर से गुनाह नहीं छोड़ते। फियर अल्लाह। सर किसी से बात कर रहे थे ना सिगरेट छोड़ने पे, तो ये उसको ना बहुत लॉजिकली काइल कर रहे थे कि इवन वो कहने लगे कि आपको तो वाकई एक इंस्ट्रक्टर होना चाहिए कि जो अंदर पिन पॉइंट है ना, अगर उसको पकड़ ले बंदा तो वाकई फिर अगला बंदा अपनी उस चीज़ के ऊपर सोचने पे मजबूर होता है। तो उसमें भी यही बात थी कि आप खुद सोचें, आप अपने बच्चों को दुख देना चाहते हैं? सेहत ख़राब होगी ना, बीमार होंगे, अल्लाह ना करे जिस्म में कोई कमी आती, तो किसको दुख होगा? घर वालों को होगा ना, आप उन पर एक बोझ होंगे। तो जो बंदा अपना नुकसान खुद करे उसको आप क्या कह सकते हैं? तो फिर क्या समझ आई कि ओवर वेट होने का डर इससे ज़्यादा ओवर सिन होने का डर होना चाहिए। मैं फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कहते हैं कि एक बिलीवर के लिए, एक मोमिन के लिए हो सकता है कि तुम पैनी लेस हो, तुम्हारे पास कोई पैसा ही नहीं, पैनीज कहते हैं ये चेंज को, तुम्हारे पास एक पैसा नहीं, तुम होमलेस हो, बेघर हो, यानी बेपैसा, बेघर, जॉबलेस यानी अनएम्प्लॉयड हो, बीमार हो, और लग ऐसे रहे कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हो सकता है ऐसा, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक चीज़ ऐसी हो कि जो पैसों से नहीं खरीद जाती, और वो है कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, तो फिर तुम अमीर हो, गरीब नहीं हो। किसी की बात थी, एक शख्स था तो उसके पास इतना माल था, इतनी नेमत थी, और किसी दीन वाले को उसने कहा कि अल्लाह से कहो मेरे लिए दुआ करके कि बहुत है मेरे पास, जो देना था बड़ा, इतना ही बहुत है और ना दे। वहाँ से हटा तो आगे गया तो एक बंदा शिकवे कर रहा था, ना शुक्री कर रहा था, ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये नहीं, कहने लगा कि अल्लाह से कहो कि मुझे दे, कुछ तो दे मुझे, मेरे पास कुछ नहीं है। खैर, वो जो भी शख्स था, कहावत है या रिवायत है जो भी है, उसने अल्लाह ताला से बात की कि अल्लाह ताला ये जो पहला कह रहा है कि अब ना दे और, तो इसका रोक ले ज़रा सा, तो दूसरा जो है बेचारा इतना जो मजबूर है तो उसको दे दे। तो उसको जवाब में दिया कि पहले को कहो कि शुक्र करना छोड़ दे, तो दूसरे से कहो कि शुक्र करना शुरू कर दे, तो जब पहला शुक्र करना छोड़ेगा तो खुद ही कम हो जाएगा। ला इन शकर तुम ला जीद अन्ना को वाला इन कफर तुम इन्ना अजाब ही लशदीद, और दूसरे को कहो कि शुक्र करो तो मिल जाएगा। खैर, ये वापस गया, पहले के पास गया, कहने लगा तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे पास अब माल ना रहे, ज़्यादा ना आए, इतना ही बड़ा है, तो तुम ऐसा करो कि इसका शुक्र करना छोड़ दो। कहने लगा मैं पागल हूँ, जब अल्लाह ने मुझे इतना दिया तो मैं क्यों शुक्र ना करूँ, मैं तो करूँगा। कहेंगे फिर तुम्हारा नहीं रुकना। दूसरे के पास गया, कहने लगा मेरे भाई तू चाहता है कि तेरे पास बहुत हो तो शुक्र तो कर। तो कहने लगा है क्या जिसका शुक्र करूँ। कहने लगा जो है वो भी ले लो इसका। बिलीव मी, अल्लाह हमें नाशुक्रियों से बचा दे, हम अपने हाल पे खुद रहम कर लें। जब भी कोई आपसे किसी चीज़ की भी नाशुक्री करे ना, जिक्र करे नहीं है, तो वो असल में नाशुक्रापन होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अल्लाह नोज़ दैट यू वॉन्ट, अल्लाह को पता है आप क्या चाहते हैं। व्हाट यू नीड, अल्लाह को ये भी पता है आपको ज़रूरत क्या है। देखिए दो चीज़ें हैं, एक है वॉन्ट्स और एक है नीड्स। पहले अल्लाह ताला हमारी नीड्स पूरी करता है, ज़रूरियात वो पूरी हो जाती है ना, तो फिर अल्लाह ताला हमारी वॉन्ट्स भी पूरी करने लगता है। अल्लाह को ये भी पता है कि आप क्या चाहते हैं, अल्लाह को ये भी पता है कि आपकी क्या ज़रूरत है एंड व्हाट यू डिज़र्व। ये बड़ी अहम बात है, अल्लाह को ये भी पता है कि आप किस काबिल हैं, आप काबिल किसके हैं। और चौथी चीज़, एट व्हाट टाइम एंड व्हाट प्लेस, अल्लाह को ये भी पता है कि आपको क्या चीज़ कब और किस जगह पे जाके देनी है। खुलासा क्या है, अल्लाह को ये भी पता है आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या ज़रूरत है, आप किस काबिल हैं, आपको किस वक्त पे क्या मिले और किस जगह पे मिले। पांच चीज़ें करो क्या, उस पे ट्रस्ट करो और उसके फ़ैसलों पे भी ट्रस्ट करो, जो अपने बंदों के मामले में वो सही फ़ैसले करता है, क्योंकि उसको पता है तुम्हें नहीं पता। सारे गम ही ना ख़त्म हो जाए हमारे, यही तकदीर है। रदी तो बिल्लाह रब्बन, आजकल मेरे फ़ोन में ये बेल है, कई लोगों का फ़ोन मैं सिर्फ इसलिए भी नहीं उठाती, मुझे मज़ा बड़ा आ रहा होता है, रदी तो बिल्लाह रब्बन व बिल इस्लामी दीन। मैं कहती हूँ मैंने उठा लिया तो ये कट जाना है, तो कम अज़ कम 3 दफ़ा तो मैं सुनूँ। बहुत प्यारा लगता है कि अल्लाह की रज़ा पर हम राज़ी हैं। फिर नेक्स्ट क्या, सुबहान, अगर कोई बहुत बड़ा नॉन मुस्लिम लीडर टाइप शख्स आपका जिक्र करे कहीं जाके, तो आपको कैसा लगेगा। जैसे दुनिया में नाम आ जाता है, टीवी पे आ गया, सदर ने ये कह दिया, वजीर ने ये कह दिया, तो कहते हैं जब दुनिया में कोई बंदा भी अच्छा या बुरा, काफिर को अगर आप मतलब समझ लें कि कोई भी दुनिया में आपका जिक्र करे तो आपको कितना अच्छा लगता है। तो तसव्वुर कीजिए कि जब अल्लाह आपको फरिश्तों की महफिल में याद करे तो वो आपके लिए कितनी बड़ी बात होगी। आया ये कुरान में कहीं, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। और हदीस है ना कि बंदा जब मुझे दिल में याद करता है तो मैं उसको दिल में करता हूँ, जब महफिल में करता है तो उससे अच्छी महफिल में करता हूँ उसको याद। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कहते हैं कि इस कुरान को अपनी ज़िंदगी में दोस्त बनाएं, आप अपने आप को कुरान से अजनबी ना बनाएं। कुरान एक दोस्त की तरह, जितनी पुरानी दोस्ती होती जाएगी आपकी, उतना वो दोस्त अपने राज आपके साथ शेयर करेगा। आप कहते हैं ना ये बचपन की दोस्त है, फलानी सहेली है, अल्लाह अकबर कबीरा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कहते हैं कि मेरी इस बात पे तारीफ़ ना करो कि मैं बहुत दीनदार हूँ, मेरी इस पे तारीफ़ ना करो, क्योंकि मेरी बहुत सारी कमियाँ हैं जिसका तुम्हें नहीं पता, जो तुमने नहीं देखी, राइट। और आखिर में फिर लिखा हुआ है तौबा, कुरान की आयतें हैं। अल्लाह किन से मोहब्बत करता है, इन अल्लाह युहिब्बुल मुततहरीन और इन अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। तौबा करें, क्योंकि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो तौबा करते हैं और जो पाक साफ़ रहते हैं। और अल्लाह ताला हमारे दिलों को पाक करे, अपनी ब्लेसिंग्स हम पे दे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नेमत थी, अल्लाह ताला हमें उनके तरीके पे रखे। तो ये था एक खुलासा इस साल के खुतबे हज का। क्या लगा आपको इन सारी बातों को सुनकर, क्या इसमें फिरकेबाजी, तफरकाबाजी, मसलियत पसंदी है। मैं पूरा वक्त से क्या सोच रही थी, यानी इमाम जिन्होंने भी ये खुतबा तैयार किया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने दिल पे अपने ऊपर लेकर सच बोलूँ तो मेरी भी हमेशा ख्वाहिश करेक्टर बिल्डिंग की होती है, किरदार साजी। आप देखें क्या ये बुलेट्स नहीं हैं, मोती हैं, जेम्स हैं आपकी मेरी अपनी इसलाह के। तो फ़र्द की इसलाह के लिए हज पे हम जाते हैं, लेकिन अफसोस जो बैठे होते हैं उनको पता नहीं कितना फ़ायदा होता है, जिनको होता होगा उनको यही पॉइंट्स हैं जो एकदम ज़िंदगी बदल देते हैं। अल्लाह ताला बस इन नेमतों की कदर की तौफीक दे, ठीक है। जज़ाकअल्लाह खैर, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।